हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जाने से पहले अभय एक बार फिर झलक के पास आया और सिर झुकाकर बोला, हो सके तो मुझे माफ कर देना थप्पड़ वाली भाभी। उसकी आवाज में पहली बार सच्ची शर्मिंदगी और पछतावा साफ सुनाई दे रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की होंगी, और ये भी कि आपकी कोई जुड़वां बहन होगी और आप इतने बड़े परिवार से होंगे। सचमुच भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभय जोश और भावनाओं में बोलते बोलते झलक को भाभी कह बैठा। अब सबकी नजरें एक साथ अभय पर टिक गईं। कबीर मन ही मन सोचने लगा, ये तो गया, इसकी तो शक्ल अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई, लगता है एक बार फिर पिटेगा। इससे पहले कि झलक कुछ कहती, कबीर तुरंत आगे आया और बोला, सॉरी, इसकी तरफ से भी मैं माफी मांगता हूँ, इसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब कभी कभी उल्टा सीधा बोल देता है, मैं समझा दूंगा इसे, यह आपको भाभी नहीं कहेगा। जैसे ही कबीर ने ये कहा, अभय को अपनी ही बात पर पछतावा होने लगा। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सोचने लगा कि उसने क्या बोल दिया। उधर आदित्य हल्की मुस्कान के साथ ये पूरा नज़ारा देख रहा था। झलक ने किसी बात का बुरा नहीं माना, वो शांत स्वर में बोली, कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही झलक ने कोई बात नहीं कहा, आदित्य के दिल में फिर से जैसे लड्डू फूट पड़े। उसका मन तो कर रहा था कि वहीं खड़ा होकर मुस्कुराता रहे, लेकिन झलक का भावहीन चेहरा देखकर उसने अपनी भावनाओं पर तुरंत काबू पा लिया। अभय और बाकी सब लोग मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। सभी के जाने के बाद अनामिका तुरंत झलक के गले लग गई। झलक, सच में आज तो मज़ा ही आ गया, कितने दिनों से कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन आज सबको हराकर और ऊपर से उन गुंडों को सबक सिखाकर सच में बहुत मज़ा आया। झलक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम खुश रहो। उसके गहरे लहजे को सुनकर अनामिका के चेहरे पर अलग से भाव आ गए। क्या बात है, तुम रणविजय के बारे में तो नहीं सोच रही? इनफैक्ट मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने कभी उस जैसे घटिया इंसान को पसंद किया था। झलक ने गंभीर स्वर में कहा, वक्त आ चुका है रणविजय का सामना करने का, सिर्फ दो दिन बाकी हैं, तैयार रहना। ये कहकर झलक अपने कमरे की ओर चली गई। अनामिका कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। तभी उसे याद आया, दो दिन बाद होने वाला अवार्ड सेरेमनी, वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि मुंबई में होने वाला था, और वो भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा था। अचानक अनामिका को अजीब सा ख्याल आया और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। वो तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। उसके पिताजी ने उसकी आंखों का भाव पढ़ लिया, उसका हाथ थामकर बोले, मेरे बच्चे, वक्त आ चुका है अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने का, और याद रखना, इस लड़ाई के बाद न जाने कितने दुश्मन पैदा होंगे, हमें सबका सामना करना होगा। और हाँ, उस फंक्शन में हम सब जाएंगे, लेकिन झलक के बुलाने के बाद। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। ये सुनकर अनामिका के चेहरे पर भी भरोसा झलकने लगा। उधर झलक अपने कमरे में थी, वो बेचैनी से टहल रही थी। इन दिनों जो कुछ भी हुआ था कहीं ना कहीं उसके प्लान का हिस्सा था, सब कुछ उसकी रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। झलक अच्छी तरह जानती थी, चाहे वो अपनी पहचान कितनी भी छिपा ले, सिद्धार्थ खुराना उसे ढूंढ ही लेगा। कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ के आने का इंतजार भी कर रही थी। सिद्धार्थ के साथ आर्यन भी वहां मौजूद था, और झलक दोनों के असली चेहरे साफ साफ देख चुकी थी। झलक ने अभय का फोन अपने हाथ में लिया और धीरे से बोली, मिस्टर खुराना, आप आकांक्षा ओब्रॉय से शादी करना चाहते हैं ना? मैं भी चाहती हूँ कि आप उससे शादी करें, लेकिन शादी के बाद मेरे गिफ्ट के लिए तैयार रहिएगा। ये कहते हुए झलक की आंखें हल्की सी नम जरूर थीं, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा एक अजीब सा दृढ़ निश्चय चमक रहा था। फिलहाल झलक ने जल्दी से अपना लैपटॉप सिस्टम खोला और फटाफट सारी चीजें सेट करने लगी। वहीं दूसरी ओर आदित्य के चेहरे की खुशी की चमक आज कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पूरे रास्ते मुस्कुराते हुए राणा मेंशन में पहुंच चुका था। बलबीर जी ने आदित्य के चेहरे की चमक देखी तो उनके मन में अचानक एक अनजाना सा डर बैठ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मेरा बच्चा आज बहुत खुश नजर आ रहा है, और शायद झलक उसके लिए बेहतरीन जीवन साथी भी साबित हो। लेकिन, जैसे ही उन्होंने लेकिन कहा, उनके चेहरे पर अलग तरह की आशंकाएं उभर आईं। आदित्य ने दादाजी के चेहरे की परेशानी देख ली थी। वो सोचने लगा, जब सब कुछ ठीक हो गया है तो दादाजी इतने उदास क्यों लग रहे हैं? थोड़ी देर में सभी लोग घर पहुंच चुके थे। अभय और कबीर पहले से ही बहुत थके हुए थे, बास्केटबॉल खेलने के बाद तो उनका शरीर जवाब दे चुका था। वैसे भी दोनों पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, इसलिए सीधे अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़े। लेकिन आदित्य ने दादाजी को रोक लिया। दादाजी, गाड़ी में मैंने देखा आप कुछ परेशान लग रहे थे, बात क्या है? दादाजी ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम फालतू की चिंता कर रहे हो। लेकिन आदित्य ने उनका रास्ता रोक लिया। मैं आपसे सिर्फ सच जानना चाहता हूँ दादाजी, क्या बात है, प्लीज मुझे बताइए। बलवीर जी ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बेटा, मान लिया कि झलक तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी, तुम उससे शादी करना चाहते हो, ये भी ठीक है, लेकिन उसकी क्या? एक पल के लिए आदित्य की आंखों के सामने कुछ अनचाहे चेहरे घूम गए। वो समझ गया बात उसकी माँ की हो रही है। आदित्य की माँ एक सफल बिजनेस वुमन थी, अपने काम और साम्राज्य में इतनी व्यस्त कि उन्होंने कभी अपने बेटे को वक्त ही नहीं दिया। उनका स्वभाव सख्त और अनुशासन प्रिय था। आदित्य उनकी रग रग से वाकिफ था, इसलिए वो दादाजी के साथ ही रहता आया था। बलवीर जी ने आगे कहा, तुम्हारी माँ बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर सकती है, झलक उससे ज्यादा कामयाब है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो हमेशा अपने से नीचे हैसियत वाले लोगों को पसंद करती है, कहें झलक की कामयाबी तुम्हारे और उसके रिश्ते की रुकावट ना बन जाए। ये सुनकर आदित्य सन रह गया। भले ही वो अपनी माँ के साथ नहीं रहता था, लेकिन वो उनका सम्मान करता था। वो अपनी माँ का दिल दुखाकर घर तोड़ना नहीं चाहता था। उसने दादाजी को भरोसा दिलाया, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मम्मी झलक को जरूर पसंद करेंगी, मैं उन्हें समझा लूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे अब अपनी माँ की प्रतिक्रिया का डर सताने लगा था, क्योंकि उसकी मॉम एक नंबर की हिटलर मॉम टाइप थी और कबीर तो हमेशा उन्हें हिटलर आंटी ही कहकर बुलाता था। फिर भी उसने मन ही मन फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए वो शादी करेगा तो सिर्फ झलक से, किसी और के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। तभी उसके फोन पर झलक का मैसेज आया। स्क्रीन पर झलक का नाम देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान लौट आई। मैसेज में अवार्ड सेरेमनी का इनविटेशन था, जो खुद राजीव दुरानी की तरफ से भेजा गया था। झलक ने साफ लिखा था कि वो सेरेमनी में आदित्य के साथ जाएगी और बाकी परिवार बाद में आएगा। ये पढ़कर आदित्य को बेहद अच्छा लगा, उसे झलक के साथ वक्त बिताने का एक और मौका मिल गया था। उधर सिद्धार्थ ने भी जी जान लगाकर मेहनत की थी। उसने अपने नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए थे। पूरे शहर में चर्चा फैल चुकी थी कि इस बार का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड फिर से सिद्धार्थ खुराना को ही मिलेगा, उसकी टक्कर का कोई नहीं है, लोग यही कह रहे थे। उर्वशी खुराना गर्व भरी नजरों से अपने बेटे को देख रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार भी अवार्ड उसी को मिलेगा। वहीं रणविजय मन ही मन सोच रहा था, जितने ऊपर उड़ोगे सिद्धार्थ खुराना, उतनी ही बुरी तरह गिरोगे।
उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना पक रही थी। फिलहाल आकांक्षा ने अपने लिए सबसे महंगे कपड़े पसंद किए थे, जो कि सिद्धार्थ ने उसी दिन मंगवाए थे। आकांक्षा ने सिद्धार्थ के साथ अवार्ड सेरेमनी में जाने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे साफ मना कर दिया था कि वो अवार्ड सेरेमनी में केवल अपने परिवार के साथ जाएगा और तुम्हें भी अपने परिवार के साथ वहां आना होगा। और उसके बाद जैसे ही वो अवार्ड जीत जाएगा, उसी रात शाम को वे लोग शादी भी कर लेंगे। कहीं ना कहीं आकांक्षा के चेहरे पर इस बात की खुशी भी थी कि चलो सिद्धार्थ के साथ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके साथ तो बैठेगी ही, वो परिवार के साथ जा रहा होगा तो क्या हुआ। इसी सोच के साथ वो फटाफट अपनी तैयारियों में लग गई थी और अवार्ड सेरेमनी से एक दिन पहले ही पार्लर जाकर ब्यूटी स्पा से लेकर जितनी भी ब्यूटिशियन वाली चीज़ें होती हैं सब कुछ करवाने के लिए पहुंच चुकी थी। नैना भला कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी खुद को बहुत अच्छे से सजा संवार कर तैयार किया था। कहीं ना कहीं सभी के मन में अभी भी झलक को लेकर उलझन बनी हुई थी। अवार्ड सेरेमनी से एक दिन पहले अपनी बेटी आकांक्षा को लेकर वो खुराना मेंशन पहुंच चुकी थी। उस वक्त रणविजय, सिद्धार्थ, उर्वशी और ईशान ओबेरॉय सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी नैना ने दादी को देखकर कहा था, मिसेस खुराना, आप तो जानती हैं कि मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ। हमें कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि वो लड़की अवार्ड सेरेमनी के आसपास भी नज़र ना आए। आप तो जानती ही हैं, अगर वो लड़की वहाँ आएगी तो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ फिर से करेगी। और आप तो जानती हैं, जब जब मैं उस लड़की को देखती हूँ, मुझे अपना ज़ख्म साफ नज़र आता है, अपना वो दर्द फिर से ताज़ा हो जाता है, जैसे मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही हूँ। ये कहते हुए उसकी कपटी आँखें भर आई थीं। उर्वशी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था कि उसे पूरा यकीन है, जिन लोगों को काम पर लगाया गया है वे जल्दी ही अपना काम कर देंगे। भले ही उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद वे गुंडे उसी लड़की से संपर्क करने के बाद ही कुछ कदम उठाएंगे, उसने मन में सोचा। इस बात पर उर्वशी ने उसे दिलासा देते हुए कहा था, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इतनी हिम्मत कर पाएगी, और वैसे भी वहाँ शहर के सभी प्रतिष्ठित और अमीर परिवार शामिल होने वाले हैं। आदित्य राणा भले ही अमीरों में से एक हो, लेकिन अगर वो वहाँ आए भी तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी रखेल को साथ लेकर आएगा। उर्वशी ने ये बात बड़ी नफ़रत के साथ कही थी। उधर सिद्धार्थ के दिल में अजीब सी चुभन पैदा हुई। जैसे ही उर्वशी ने झलक को आदित्य की रखेल कहा, उसे ये शब्द बेहद बुरा लगा। उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। वो गुस्से में अपनी सीट से खड़ा हो गया। तभी दादी ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, क्या बात है, हमने जो कहा सच ही तो कहा। तू उस लड़की के लिए अभी भी मन में किसी तरह के जज्बात नहीं रख सकता। एक बात ध्यान से सुन ले सिद्धार्थ, उस लड़की का यहाँ आना हर हाल में रोका जाएगा, और अगर वो आई तो उसकी जान जाना भी निश्चित है।